तत्वार सूत्र लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धे आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित जो तत्वार सूत्र है उसके हम पहले अध्याय के दूसरे सूत्र को देखते हुए पृष्ठ क्रमांक 8 पर आए हैं। देखो यहां ये बात चल रही है, ये तत्व जो है वो तत्व का अर्थ कैसा हो सकता है, उसमें क्या क्या अर्थ गर्भित है और उसका मर्म क्या है, ये बताना चाहते हैं। यहां हम समझने की कोशिश करते हैं, कल तो बात की थी, लेकिन त्व याने पना और तत् याने वह, याने उसका वह पना, वह तत्व है उसका, याने जो द्रव्य है उस द्रव्य का जो द्रव्यपना है, द्रव्य का जो भाव है, द्रव्य का जो स्वभाव है, उसको उसका पना कहा। याने जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य का जीवपना जो है क्या है, ज्ञायक भाव जो है वह उसका तत्व है। तो कभी भी हम मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा तो कहेंगे, लेकिन ज्ञायक भाव वो मैं हूं, यानी ज्ञायक भाव जो है वो उसका पना है, ज्ञायक का स्व का। तो यहां ये कह रहे हैं ये तत्व जो बात है, देखो व्याज की क्या कहते देखेंगे, तत्व शब्द का अर्थ तत्पन यानी उस रूपता है। अभी तो बहुत आसान हो गया, प्रत्येक वस्तु के, ये वस्तु का और कौन कौन से शब्द लगाए, तत्व के स्वरूप से तत्पन है और पर रूप से अतत्पन है। समझ में आया भाई, ये जो है इसमें कौन से गुण हैं, गुण कौन से, कौन कौन से इसमें कौन कौन से गुण हैं, पहले हम ये सोचना है कि ये हम जो देख रहे हैं, मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो तो कौन सा द्रव्य होना चाहिए।
ये में से कौन सा द्रव्य है,
तो पुद्गल द्रव्य के गुण कौन से हैं, बोलो साहब, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये उसका तत्पना है, किसका, ये क्लिप का, पुद्गल का, और वह मेरा तत्पना है। ख्याल में आए, वह मेरे से वो भिन्न है ना, वो पना मेरे में नहीं है तो वह अतत रूप से मेरे में है, उसमें तत् रूप से है। बात ख्याल में, अभी हमारी भूल क्या हो रही है, हमने ऐसा माना है, गए 4 साल से हो गए, 1 किलो भी वो मेरा वजन ऊंचा नहीं हुआ ना बढ़ गया, क्या तो हम क्या मानते हैं कि वजन पना ये मैं हूं, यानी ये शरीर मैं हूं, लेकिन वहां ये नहीं सोचते ये शरीर का जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो मेरे में अतत रूप से है, मेरे जो ज्ञान दर्शन आदि जो है वो उसमें अतत रूप से है, हमारी ये अनादि से भूल चल रही है। देखो अभी तो आप हंस रहे हैं, बराबर है, میں تو کہوں گا بار بار ہم سوچنا کیا ہو گیا. ارے صاحب ابھی اٹھنے میں تکلیف ہوتی, کیا ہو گیا؟ گھٹنے دکھتے ہیں. تو تو نے کیا مانا تیرے کو؟ کیا گیا؟ یہ بھیا بات ایسی ہو کہ جو متھیاتو ہے, یعنی میں کہوں گا درشن موہنی ہے اور چارتر موہنی ہے, تو وہ جو راگ دویش چل رہے ہیں یا جو کچھ کرودمان مایا لوک کے پرنام ہو رہے ہیں, لوک کا پرنام ہے نا, شریر روپ میں ہوں اس طرح سے لوک چل رہا ہے نا, اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی. تو دیر از اے ویری تھن ہیئر لائن یہ متھیاتو میں اور راگ دویش میں. یہ میرا جو ابھی چل رہا ہے یہ پرنام, وہ متھیاتو سے یکت ہے یا کیول چارتر مونی کا ہے ایسا؟ لیکن ایک بات اور بتا دیتا ہوں, جس کے متھیاتو ہے اس کا متھیاتو کا بھی ہے اور چارتر مونی کا بھی ہے. لیکن یہی بات ہم دیکھتے ہیں جب رام جیسا تدبھو موکشگامی جیو بھی اپنے بھائی کا شو چھ چھ مہینے اٹھائے گھوم رہے تھے, وہ تو سمیک درشٹی تھے بھائی, پھر بھی ان کو ان کے ہم تو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں, لیکن میں ایسا کروں تو بالکل تدن متھیاتو سہت والی بات ہے یہ. تو ہمارا تو بارمبار یہی سوچ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی آج بھوجن بنا اور وہ ٹو مائی ٹیسٹ نہیں رہا, تو ہم کو ایک دم ایسا ہوتا کیا ہے ایسا کھانا بناتے ہیں. پہلے یہ تو نکی کر کہ کون بناتا ہے, تیرے پاپ پنیہ کا ادے ہے کیا نہیں, تو آج پاپ کا ادے چل رہا ہے اس لیے ایسا گھٹیا کھانا مل گیا تیرے کو. یہ سوچنا بھائی, بار بار سوچنا میں تو کہوں گا. تو میں ان سب پدارتھوں سے بھن ہوں, میں تو گیاک ہوں اور اس کا جو بھاو ہے وہ میرا تتو ہے. یہاں تک جب ہم نکی کرتے ہیں تب دیکھو گرودیو نے تو ایک اتنی بڑھیا بات بتائی ہے. میں کہوں گا کوئی بھی شاستر پڑھو, کوئی بھی بات پڑھو, وہاں سے ہٹ کر سو کے طرف آوے وہ عادت سی لگنی چاہیے. یہ بات تو کیا کہہ رہے, دیکھو
یعنی راگ آنا بات الگ ہے, جیسے کھانے کا بھاؤ ہے, کپڑے پہننے کا بھاؤ ہے, لڈو کسی کو اچھا لگتا ہے, سمے درشٹی ہونے پر لڈو کھانا بند کرے گا؟ تو کہتے راگ آنا الگ بات ہے, پہلے راگ کا سوامی پنا تھا, اب راگ اٹھتا ہے پر اس کو جاننے والا رہ جاتا. پہلے تو اس میں جو بدھتا تھی کہو یا یہ راگ روپ میں ہوں مان رہا تھا, اب وہ نہیں, وہ چھپ ہو رہا ہے اس کا. جیسے اس کے لیے ادھارن دیتے ہیں, کمار کیا کرتا ہے, وہ چاک گھماتے, کبھی دیکھا کہ نہیں, وہ لکڑی لیتا ہے اور ایسا ایسا کر کے چاک گھماتا ہے. اب وہ ہاتھ اس نے نکال دیا, ابھی وہ تو گھڑا ہے, بنا رہا ہے, مٹی کا ہاتھ لگایا, اس کو پنج رکھ دیتا, چاک ابھی گھما نہیں رہا ہے, پھر بھی چاک گھوم رہا ہے کچھ کال کے. جیسے آپ کو پنکھا چل رہا ہے, آپ نے بٹن تو بند کیا, پھر بھی کچھ کال تک گھوم رہے, بند ہونے کے لیے گھوم, پھر بھی کچھ کال تک گھومے. ایسے ہی متھیاتو نکل جانے کے بعد بھی راگ کچھ کال تک چلے, ابھی وہ مٹنے والا ہے یا اس کا سوامیتو نہیں رہا.
سوامیتو تو ابھی نہیں رہا, مٹے گا تو دسویں گنستان میں.
ابھی وہ تو کرم سے, ابھی جو ایک ایک بات ہم دیکھیں گے, انت انوبندھی گیا, ابھی اپرتیکھن جائے گا, اپرتیکھن جائے گا, پھر سنگلن گھٹتے گھٹتے چلے جائے گا, اس طرح سے. تو راگ آنا الگ بات ہے اور راگ کا سوامیتو ہونا الگ.
کرتوتو ابھی چل رہا ہے.
اور یہ جو ابھیپرائے کی بات ہے, وہ تو باہر سے کیا, پہلے بھی کھا رہا تھا, گھر میں رہ رہا تھا, بچوں کا سب کچھ دیکھ رہا تھا, ویاپار دھندا ابھی بھی کر رہا ہے, تو کیا ہوا اس کے سمے کو, یعنی کیا ہوتا, باہر سے تو دکھنے والی بات ہے, اس کا جو ابھیپرائے ہے اس کو پتا ہے اندر ہی اندر, اس کو فیل ہو رہا ہے نا کہ پہلے اپنے پرینام کیسے تھے, ابھی کیسے ہے, پہلے انہیں پریناموں میں کیسا رچا پچا رہتا تھا, ابھی اس کا بھی رس نہیں رہتا, یہ بات باہر سے پتا نہیں چلتا. ہم تو اس کے ایکشن دیکھتے, کریا دیکھتے, کیا پہن رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیسے جاتا ہے, کیا کرتا ہے, اس میں کچھ پتا نہیں چلے گا. اور لوگوں کو پتا بھی نہیں کرنا, اندر یعنی اپنا کوئی دیکھنا, کہ باہر کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, اسی کی طرف نظر ہے. دیکھیں کہ یہ ساری باتیں سب اس پرکرن میں تو یہی باتیں آنے ہوں گی. سمے درشٹی کا جو کچھ سوروپ ہے, پہلے تتوار شردانم کی بات کریں.
کہتے ہیں प्रत्येक वस्तु के तत्व के स्वरूप से तत्पन और पर रूप से अतत्पन है. ये बात भाई अमूल कल आपको ख्याल में नहीं आया, अभी थोड़ा सा उसका मर्म थोड़ा सा ज्ञान में आया. जीव वस्तु है इसलिए उसके अपने स्वरूप से तत्पन है. वस्तु है कहो या द्रव्य है कहो, तो वो क्या कह रहे हैं, अपने स्वरूप से, स्वरूप से यानी अपने स्वभाव से, अपने गुणों से कैसा है, तत्पन है. और पर के स्वरूप से अतत्पन है. जीव चैतन्य स्वरूप होने से ज्ञाता है और अन्य सब वस्तुएं ज्ञेय है. इसलिए जीव दूसरे सभी पदार्थों से सर्वथा भिन्न है. यानी कथनचित एकमेक है नहीं, सर्वथा भिन्न है. यहां तक तो कल हमने पढ़ा था बराबर. जीव अपने से तत् है इसलिए उसे अपना ज्ञान स्वतः होता है. ये वाक्य से पहले मैं दूसरी ये बात बताना चाहता था, अभी का विषय नहीं है. लेकिन एक बात यहां जो लिखी है कि जो चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसके जो गुण है वह तत् रूप से है. अभी यहां क्या बात बताते हैं, जब कोई जीव या केवल ज्ञानी, जीव की क्यों बात करेंगे, केवल ज्ञानी स्व को जान रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने जो कोई गुण है उसमें तत् रूप से परिणमित हो रहे हैं. यानी दूसरी भाषा में कहो तन्मय होकर जान रहे हैं. यानी तन्मय होकर यानी क्या, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, सुख स्वभावी हूं, ऐसा जो कुछ जितने भी कुछ है उस रूप से उनकी परिया परिणमित हो रही है. अब इसमें एक बात बताई क्या है कि सारे दुनिया के पदार्थ उसके लिए ज्ञेय है. तो ज्ञेय है तो जानेगा जब ही, तो ज्ञेय कहेंगे कि नहीं, क्या बिना जाने ज्ञेय कहेंगे. लेकिन उनमें तन्मय होकर नहीं जानते हैं, होंगे ही कैसे, वो तो अतत रूप से है उनमें. ये जो झगड़ा चल रहा है ना स्वपर प्रकाशक वाला, तो ये तत्वा सूत्र के दूसरे सूत्र में सारा क्लीन होता है, क्लियर हो जाता है. क्यों, विश्व के सारे द्रव्यों में दूसरे का या किसी न किसी ज्ञान का विषय हो जाए ऐसी ताकत है. और एक के नहीं, एक समय में अनंत जाने इतनी ताकत, अनंतों के ज्ञान में झलके ऐसे प्रत्येक द्रव्य में ताकत है. तो झलके तो जाने के नहीं, बिना जाने झलके कहो या जानने में आवे, जानवा योग्य था है, ये कब होगा, सामने वाला कोई जाने तब ना. लेकिन परने जानतो ज नहीं, परने जाने व्यवहार छे इतले जानतो नहीं. ऐसी बात बहुत, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े लोग भी ऐसा कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो फिर कैसा करे. इसलिए मैं यहां क्लैरिटी कर रहा हूं. यहां तो देखो लिखा कितना क्लियर कट लिखा है कि अन्य सब वस्तुएं ज्ञेय है. तो ज्ञेय कहा, किसको कहा जाता है, कि मेरा और पर वस्तु का ज्ञेय ज्ञायक संबंध है. तो मैं ज्ञायक हूं और मेरे ज्ञान का ज्ञेय, एक बात. और दुनिया की सारी वस्तु मेरे लिए ज्ञेय है ये तो मैंने माना ही. मैं करता और वो मेरा कर्म, कर्म यानी मेरा कार्य. क्या पूरा दिन तुम्हारा आत्मा आत्मा ही करना, क्या पैसा कमाने का नहीं, खाना खाने का नहीं, बच्चों को संभालने का नहीं, ऐसा लोग क्या बोलते हैं, दलील करते हैं. तो अभी उसको क्या बोले भैया तेरा और उसका ये क्या संबंध है, कैसा समझे वो। लेकिन हम दूसरों को समझाना नहीं चाहेंगे, हम अपने को समझे, यानी हम ये बात स्वयं समझे मेरी भूल किसमें हो रही है, ये दुनिया के सारे पदार्थों का मैं करता और वो मेरा कार्य, ऐसा हमने मान के रखा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वैसा नहीं है, ये अतत भाव से है तेरे साथ। देखो देखो अभी आगे बता रहे, जीव अपने से तत् है, यानी अपने से तत् है, यानी अपने गुण पर्याय से तत् रूप है, इसलिए उसे अपना ज्ञान स्वतः होता है। यहां तो पॉइंट कोई अलग बता रहे, यानी इसका ज्ञान होने के लिए पर के किसी भी चीज की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं उसका अपना ज्ञान स्वतः होता है और जीव पर से अतत है, इसलिए उसे पर से ज्ञान नहीं हो सकता। यानी यहां देखो भैया, अस्ति और नास्ति, यानी जिसको निगेटिव बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेटिव, दोनों बातें बताइए, ऐसा है और ऐसा नहीं है, यानी फिर बीच में नहीं, जरा थोड़ा सा तो कुछ ऐसा होगा, नो अदर पॉसिबिलिटी। ज्ञान स्वतः से होता है, क्यों, तत्स्वरूप है, और बाकी सब कैसे हैं, अतत रूप से हैं, तो उनके कारण से मुझे ज्ञान होवे ये हो ही नहीं सकता। घड़े का ज्ञान घड़े के आधार से होता है, ऐसा कई लोग मानते हैं, किंतु यह उनकी भूल है। घड़े के आधार से यानी क्या कहना चाहते हैं,
घड़ा है इसलिए ज्ञान,
हाँ घड़ा है इसलिए उसे ज्ञान हुआ, सामने घड़ा ही नहीं होता तो कैसे ज्ञान होता। आपके हाथ में घड़ी है क्या, घड़ा तो नहीं है, घड़ी कितने बजे, तो घड़ी नहीं इसलिए मुझे ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा आप कहेंगे तो ये गलत है, ऐसा बोलते हैं, बहुत मार्मिक बात है। तो फिर अभी हमको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, अभी इस समय कितने बजे है इसका ज्ञान होने का टाइम नहीं है, मतलब वो उस समय की योग्यता नहीं है, जरा आप इधर उधर नजर करके इसमें देखोगे तो पता लग जाए, तभी तुम्हारा ज्ञान अपने से हुआ है घड़ी देखने से नहीं, ये बात बताना चाहते हैं। अब वहां तो ये घड़ी तो उनके जमाने में होगी नहीं शायद, तो घड़ा तो हर जगह होता है, तो जहां आचार्य खाना वाना मतलब आहार लेने जाते होंगे तो घड़ा तो देखे ही है, और घड़ा सारी दुनिया जानती है, इसलिए उसका उदाहरण दिया। क्या कहा, घड़े का ज्ञान घड़े के आधार से होता है, यानी घड़ा होता ही नहीं तो हमें ज्ञान नहीं होता था, घड़ा है उसके आधार से हमें ज्ञान हुआ, ऐसा मानने वाले कहने वाले आग्रह धरने वाले लोग हैं। तो कहते किंतु यह उनकी भूल है, ज्ञान जीव का स्वरूप है, स्वरूप है कहो, स्वभाव है कहो, गुण है कहो, जो भी है, इसलिए वह ज्ञान अपने से तत् है और पर से अतत है, जीव के प्रति समय अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञान की अवस्था होती है। क्या कहा अमोल भाई, देखो देखो, जीव के प्रति समय यानी एवरी समय अपनी योग्यता के अनुसार, यानी वो ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञान की पर्याय होती है, अवस्था होती है। अभी आपको कितने बजे मालूम नहीं हुआ, क्यों, हाथ में घड़ी नहीं थी साहब, तो गलत है, मेरे ज्ञान का उस रूप परिणमन नहीं होना था, उसकी योग्यता नहीं थी, इसलिए मुझे कितने बजे का टाइम नहीं हुआ। तो कितनी अनंत स्वतंत्रता है प्रत्येक बातों में, परज्ञेय संबंधी अपना ज्ञान होते समय परज्ञेय उपस्थित है। क्या कहा, यानी अभी हमको कितने बजे ये समझना है तो सामने घड़ी हाजिर होगी, परज्ञेय संबंधी अपना ज्ञान होते समय परज्ञेय उपस्थित है, किंतु जो यह मानता है उस पर वस्तु से जीव को ज्ञान होता है, तो मानो कि वह जीव को तत्व नहीं मानता अतत्व मानता है। यदि घड़े से घड़ा संबंधी ज्ञान होता तो ना समझ यानी अबोध जीव को भी घड़े की उपस्थिति होने पर घड़े का ज्ञान हो जाना चाहिए। अभी यहाँ घड़ा नहीं कहो, लेकिन अभी हम कहेंगे इधर क्या बोलते हैं,
सब में एक करेक्शन है, पुस्तक किस किस के पास है, यहाँ लिखा ना तेनी पासे घड़ो हो त्यारे तेने ते घड़ानू, आगे क्या लिखा है, ये है आपके पास पुरानी पुस्तक में, सबके पास नया है, ये
पुराना
है, ज्ञान लिखा है उसमें,
आपने क्या
नहीं, इसमें ज्ञान पोता थी था, लेकिन एक वाक्य इसमें छूट गया, ये ज्ञान थव जो ये पन एम थत नहीं माटे ज्ञान पोता थी था एम समय, ऐसा पूरा लिखा है गुजराती में, है इसमें भी बराबर।
देखो अभी इनको क्या कहना है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ शास्त्र में कि हमारे सामने अभी वो किधर एशियड गेम चल रहे ना, तो उसमें वो चाइनी भाषा में कुछ कुछ लिखा है, तो पढ़ के अपने को ज्ञान नहीं होता है, तो हम उसके लिए अबोध है, अगर सामने चीज है तो ही मुझे ज्ञान होता हो, तो वो चाइना चाइनीज भाषा में जो लिखा है मेरे को होना चाहिए, इसका ही अर्थ ये है। यहां क्या लिखते देखो कि जो यह मानता है कि उस पर वस्तु से जीव को ज्ञान होता है, तो मानो कि वह जीव को तत्व नहीं मानता, क्योंकि हमने क्या देखा है, ज्ञान जो होता है वो स्व से होता है, पर से नहीं होता है, और ये मानने वाले कैसे पर से ही ज्ञान होता है, तो वहां लिखा है ना भाई, तो पढ़ना, अच्छा तमिल में लिखा है वो तो पढ़, फ्रेंच में लिखा है आता ही नहीं ना, यदि घड़े से घड़ा संबंधी ज्ञान होता हो तो ना समझ अबोध जीव को भी घड़े की उपस्थिति होने पर घड़े का ज्ञान हो जाना चाहिए। एक साल का बच्चा है साथ में लेके जाओ, उसको क्या मालूम घड़ा है क्या है, किंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए यह सुनिश्चित है कि ज्ञान स्वतः होता है। यदि जीव को पर से ज्ञान होने लगे तो जीव और पर एक तत्व हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता, क्यों ऐसा नहीं होता, आपने क्या नाम नितिन भाई, अरे वाह शाबाश, तेरा काम हो जाएगा बेटा, यानी तुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसा कहने ऐसा तू बराबर उत्तर देगा, तुम क्या समझा वो तुम्हारा, नहीं 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 अरे उसके लिए इतनी अच्छी हंसी आती क्या, तुम नहीं समझे, तुमको मालूम नहीं ना क्या
लौकिक काम की बात है,
अरे संबंध बोलो, इधर आंसू नहीं देता अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा, जो पहला अपना सूत्र है उसकी महिमा बताना चाहते हैं। यदि अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग मिथ्या दर्शन युक्त हो तो गुण संपन्न करने की जगह वे संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमणकारी दोषों को उत्पन्न करते हैं। क्या कहा, देखो इन्होंने बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे से आके अंदर, मतलब पहले में पहले ये बताया कि कोई मिथ्या दृष्टि है और वो मुनिव्रत धारण करता है, मानो कि उसने अहिंसा महाव्रत धारण किया, सत्य महाव्रत धारण किया आदि आदि, तो अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग ये कैसे हैं, मिथ्या दर्शन युक्त है तो क्या करते हैं, तो गुण उत्पन्न करने की जगह, यानी उसका फायदा होने की जगह, गुण उत्पन्न करना यानी क्या, उससे कुछ उसका लाभ होने की जगह वे संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमणकारी दोषों को उत्पन्न करते हैं। तो ये तो छह डाला का कितनी बार, मतलब उन्होंने लिखा और गुरुदेव ने इसी वाक्य को हजारों बार तो बोला होगा, मुनिवृत्त धार अनंत बार, है ना। तो ये कहते हैं जैसे विषयुक्त औषधि से लाभ नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्यात्व सहित अहिंसादि से जीव का संसार रोग नहीं मिटता। तो आजकल का कोई नौजवान खड़ा हो जाए तो आजकल तो ऐसे मेडिसिन निकली कि उसमें थोड़ा सा पॉइजन रहता ही है, लेकिन वो फायदा करता है। लेकिन यहाँ जो उदाहरण देते हैं ना, वो एक देश ही लागू होता है, सर्वदेश लागू नहीं होता, इतना ध्यान रखना। इसलिए कहते जैसे विषयुक्त औषधि से, ये विष यानी विष से लबालब भरा हुआ है, ऐसा समझना। इसलिए कहते कि उसी प्रकार मिथ्यात्व सहित अहिंसादि से, यानी ये सारे व्रत पालने से भी जीव का संसार रोग नहीं मिटता। जहां मिथ्यात्व होता है वहां निश्चयतः अहिंसादि कदापि नहीं होते। यानी क्या कहना चाहते, निश्चयतः यानी निश्चय से अहिंसा नहीं पलती है। ये क्या बताना चाहते हैं, हमने तो अहिंसा पालना यानी दूसरे किसी जीव की हम हत्या नहीं होती है ना, इसको देखते हैं। लेकिन वास्तव में वो व्यवहार अहिंसा है। निश्चय अहिंसा तो वो है कि हम पर की दया पालने गए, पर को बचाने गए, तो यहां क्षणे क्षणे भयंकर भाव मरण मरे च ऐसा बोलते हैं। यानी अपने स्वरूप को जानना पहचानना उसी में एकाग्रता करना छोड़ के दुनियादारी में वो अटका है, इसलिए कहते हैं निश्चयतः अहिंसा नहीं है, ऐसा नहीं कदापि नहीं है बोलते। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, इस पद को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। दिव्यवेणी क्या कौन लिखा है ये आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, कौने लिखी छे, मैं पूछा। हाँ, श्रीमद जी ने लिखा है और वो भी सम्यक दृष्टि थे, और सभी सम्यक दृष्टियों का कहना एक ही है। ये जो बात है ना भाई, क्या आपके कहना है तुम्हारे, नहीं नहीं नहीं, उनका कौन सा गाँव कुक कुकमा, उधर मैंने ये बात कही थी। ये जीव जो क्या है कि अपने को नहीं जाना, इसलिए वह दुखी दुखी है। क्या है वो, एक भूल गया वो बात को, नहीं नहीं नहीं, वो श्रीमद जी का ही एक वाक्य हुई, हाँ, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, यही बात मैंने पहले दिन उठाई थी। ये दुखी क्यों है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, यही बात बता रहे दूसरी वो शब्दों में है। यानी हमने अपने को ही जानने में गलती करी है, और ये कैसा है रोग है, कैसा रोग है, कैंसर रोग से भी हजार गुना खतरनाक है, क्योंकि कैंसर से तो एक भव मरता है आदमी, और ये मिथ्यात्व से तो भव तो संसार में रूल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, इस पद को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। जी, अगर कोई आत्म भ्रांति छूट जाए तो क्या होगा नितिन भाई, बहुत अच्छा, और वही धर्म का मूल है कहो, या धर्म की शुरुआत है कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा बताना चाहते हैं ना, इसलिए कहते हैं जीव के साथ अनादि काल से मिथ्यात्व दशा चली आ रही है, इसलिए उसके सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए आचार्य देव पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करने के लिए बारम्बार उपदेश देते हैं, और इतना करके भी हम रही केवड़िया गो रही गो, हमारी अवस्था ये अपनी महिमा है, सम्यक दर्शन की नहीं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र और तप में सम्यक्ता नहीं आती। सम्यक दर्शनी ज्ञान चारित्र वीर्य और तप का आधार है। ये हमने देखा है ना, ज्ञानाचार चारित्राचार वीर्याचार तपाचार, वो बात है। जैसे आंखों से मुख की सुंदरता शोभा होती है, वैसे ही सम्यक दर्शन से ज्ञानाधिक में सम्यक सुंदरता शोभा आती है। इसी संबंध में रत्नकरण शावकाचार्य ने कहा है कि
न सम्यक् सुमं किंचित् त्रैकाले द्विजगत्पत्
श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्मं समं नान्यनुभूतम्। क्या कहते हैं, तीनों काल और तीनों लोकों में त्रिजगत अपी लिखा ना, त्रैकाले और तीनों काल, तीन काल और तीन लोक में जीवों का सम्यक दर्शन के समान दूसरा कोई कल्याण यानी श्रेय और मिथ्यात्व के समान अश्रेयश्च अकल्याण नहीं है।
पहले श्रेय श्रेय लिखा ना, श्रेय न सम्यक तो समम श्रेय, सम्यक तो के जैसा कोई श्रेय नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, और न मिथ्या तो समम अश्रेय, किसकी बात है? तनुभूतम, ये तनुभूत क्या होता है? एक शब्द आता है तपोभूत, सुना है ये रत्नगणेश शाकाचार में तीसरी बात, हाँ तपोभूत मुनियों के लिए, और ये तनुभूत तनुभूत यानी सभी देहधारी जीव, जीवों की बात है, जीवों के लिए, क्योंकि जीवों के लिए मिथ्यात्व कल्याणकारी है, जीवों के लिए सम्यक तो कल्याणकारी, किसी गुणस्थान की बात नहीं है, आम जीवों की बात। तनुभूत शब्द आया ना निजीव संसारी जीवों की बात है,
भावार्थ अनंत काल व्यतीत हो चुका, एक समय वर्तमान चल रहा है और भविष्य में अनंत काल आएगा, इन तीनों काल में और अधोलोक मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक इन तीनों लोकों में जीव का सर्वोत्कृष्ट उपकारी सम्यक्त्व के समान दूसरा कोई न तो है, न हुआ है और न होगा। त्रिलोक स्थित इंद्र अहमिंद्र भुवनेन्द्र चक्रवर्ती नारायण बलभद्र या तीर्थंकर इत्यादि चेतन,
इनके तीन लोक में रहेला इंद्र, इंद्र के तीन लोक में रहते क्या, कहाँ रहते? ऊर्ध्व लोक, तो यहाँ तो तीन लोक में थे, हाँ हाँ यहाँ लिखा है ना तीन लोक में रहने वाले इंद्र,
त्रिलोक स्थित इंद्र ऐसा लिखा है ना,
क्यों लिखा?
भुवनेन्द्र का नाम
तीनों लोक की बात है ना, तो तीन लोक में इंद्र रहते हैं क्या, मेरा
प्रश्न। इंद्र प्रेरणा बेन कुछ कह रहे हैं,
तीन
अश्विन भाई बोल रहे हैं, सुनो सुनो,
तीन लोक विश्वम
तीन लोक यानी अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, हाँ तो हाँ हाँ बोलो, हाँ है ना, हाँ बोलो है, कौन से है? व्यंतर है, भवनवासी है, उनके हर एक के इंद्र है वहाँ पर, अधोलोक में है, मध्यलोक में है कि नहीं इंद्र, ज्योतिषी सारे मध्यलोक में रहते हैं, तो उनके भी अपने वहाँ इंद्र है, क्या रहे? हाँ तो देव तो तीनों लोक में रहते, तो इनके इंद्र भी तीनों लोक में रहते,
ये भवनवासी जो है ना वो अपने पृथ्वी के
थरबाग में रहते,
तो वो तो अधोलोक में
गए, असुर कुमार रहते हैं,
वो अधोलोक में गए,
और ये दोनों अधोलोक के कहलाए, जहाँ जीव है तो वहाँ उनके इंद्र, भवनवासी तो ऊपर रहते ही नहीं, भवनवासी तो भवन में ही रहते हैं, तो उनके इंद्र भी वहीं पर रहेंगे, अभ्यंतर हो सकते हैं, नीचे भी रहते ऊपर भी रहते मध्यलोक में भी रहते, और पूरे लाख योजन के अलग अलग लेवल पर भी रहते।
वो हमारे इधर बाहर में कुंडी में पीपल का झाड़ रखा, तो इंदु बहन आए, ये क्या रख दिया पंडित जी आपने, क्यों इसमें तो इसका वास रहता है, बोले अरे मेरे सामने उसका वास क्या है, वो भाग जाएगा मेरा वास लेके। आपको ये कहना है कि ये जो इंद्र जो होते हैं वो तीनों लोक में रहते हैं, और ये ज्योतिषी जो विमान है उसमें भी उनके भी इंद्र है ना। अब इनके सारे नाम, वो कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, ये सारी बात जैन भूगोल में आने वाली है।
सुनिए ना, आप लोग
हाँ नहीं अभी भूल गए ना, इतने दिन हो गया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर से चौथी लाइन में पढ़ रहा हूँ, त्रिलोक स्थित इंद्र, अहम इंद्र, भुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र या तीर्थंकर इत्यादि चेतन, अभी तीन दो प्रकार बताए, मणि, तंत्र, औषधि इत्यादि जड़ द्रव्य। मैंने क्या बोला,
मंत्र।
अच्छा अच्छा, मणि मंत्र ठीक है, नहीं मंत्र बराबर, यस, औषधि इत्यादि जड़ द्रव्य, ये कोई भी सम्यक्व के समान उपकारी नहीं है, और इस जीव का सबसे अधिक बुरा अहित करने वाला मिथ्यात्व के समान दूसरा कोई जड़ या चेतन द्रव्य तीन काल और तीन लोक में न तो है, न हुआ और न होगा। देखो कितना जबरदस्त लिखा है। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए परम पुरुषार्थ करो, कल ही बात निकली थी, जब उपदेश देंगे तब करने की बात बताएंगे। समस्त संसार के दुखों का नाश करने वाला और आत्मकल्याण को प्रकट करने वाला एकमात्र सम्यक्त्व ही है, इसके लिए उसे प्रकट करने का ही पुरुषार्थ करो। और फिर सम्यक्त्व ही प्रथम कर्तव्य है, इस संबंध में अष्टपाहुण में इस प्रकार कहा है, हम अपना आद्य कर्तव्य कहो, आद्य यानी प्रथम, क्या है ऐसा मानते हैं, कुछ नहीं, अपने उर्वरित भविष्यकाल की आयु में बराबर पैसा पैसा जमा हो गया है ना, तो बराबर हो गया तो हम कृतकृत्य हो जाते हैं, यानी अपने को वाह वाह वाह, अभी कोई चिंता नहीं। हाँ वो तो जिसके तीन तीन लड़कियां, दो दो लड़कियां होती हैं, उनको तो ऐसा ही लगता है हमारे जैसे वालों को कि लड़कियों की शादी हो गई, हम तो अभी बस छुट्टे हो गए। लोग बोलते हैं तुम तो क्या राजा रानी दोनों घर में रहते हो, और तुम कौन है, तो हम तो हमारे बहुओं के निसेवक है, नौकर है, उनके बच्चों को दुलाना पड़ता है रोज। वही लोग कहते थे कि जब हमको सिर्फ दो बेटियां थी छोटी छोटी, और हमको कहते थे कि भाई तुम कितने दुखी हो, और हमको देखो तीन तीन बेटे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अभी वो बच्चों के साफ सफाई में उड़ा दिल। मजे की बात ये है, एक बहन यहां आती थी, अभी भी आती है, क्यों क्या हो गया आती नहीं है, प्रवचन में तो बहुत बार आती थी, आप अभी क्यों बंद हो गया, क्या करें अभी बहू आई है ना, तो बहू आई है तो अभी थोड़ा दिन से उसको पूरा काम सौंप के मैं आ जाऊंगी, फिर आने लगी, दो चार महीने आई, फिर हमने पूछा, फिर कहा कि डिसकंटिन्यू हो गई, क्या करें अभी बहू पेट से है, तो सारा काम मेरे को करना पड़ता, अभी एक दफे उसकी डिलीवरी हो जाए ना तो मेरा फिर यहां से आना शुरू होगा। हमने कहा बहुत अच्छा, फिर थोड़े दिन से मिले, क्या हो गया साहब, क्या करे दो बच्चे एक साथ हो गए उसको, हमारी क्या नाम लक्ष्मी बहन जानती सब, तो वो कितना संभालेगी, तो यही है मैं तो दूसरी भाषा में बोलूंगा। ऐसा हमने बहुत बार सुना भी है, पीने वाले को बहाना चाहिए। ये पिक्चर का कोई डायलॉग है? हम तो कहते हैं शास्त्र में न आने के लिए बहाना चाहिए। कुछ भी यहां तो कुछ अन्य बात बता रहे, बहुत बढ़िया बात बता रहे कि सम्यक्त्व ही आद्य कर्तव्य है। इसके लिए कह रहे हैं कि अष्टपावर में क्या बताया है, तो कहते हैं श्रावक को पहले क्या करना चाहिए, सो कहते हैं
सम्मतम सुविमलम निकम्पम तम जाने जाए जय सावय दुख खरणाय।
सावय ने श्रावक, पहले श्रावक को सुनिर्मल मेरु की समान निष्कंप अचल यानी कैसा चलमल और अगाढ़ दूषण से रहित अत्यंत निश्चल सम्यक्त्व को ग्रहण करके दुखों के क्षय के लिए उसे सम्यक्त्व के विषयभूत एक रूप आत्मा को ध्यान में ध्याना चाहिए। हम तो कह रहे भैया हमको तो औपक्षमिक सम्यक्त्व होने के लाले पड़े, तो ये तो क्षयिक सम्यक्त्व की बात कर रहे। क्यों निष्कंप कब होगा? कि जब वेदक सम्यक्त से भी आगे बढ़कर क्षायिक सम्यक्त हो जाए। इसलिए उन्होंने बिल्कुल बता दिया चलमल और अगाढ़ दोष से रहित ऐसा निश्चल एकदम ध्रुव निष्कंप। ये क्यों करना है साहब? दुखों के क्षय के लिए। इसलिए क्या करें? वो कहते हैं आत्मा को ध्यान में ध्याना चाहिए। पहले तो श्रावक को निरतिचार निश्चल सम्यक्त्व को ग्रहण करके उसका ध्यान करना चाहिए कि जिस सम्यक्त्व की भावना से गृहस्थ को गृह कार्य संबंधी आकुलता क्षोभ दुख मिट जाए, कार्य के बिगड़ने सुधरने में वस्तु स्वरूप का विचार आवे, तब दुख मिट जाए। क्या कहा? देखो बहुत सही बात बता रहे हैं कि हम कोई कार्य करने चले और वो बिगड़ा तो हम बहुत आकुलित हो जाते हैं, और सुधरा तो बहुत गर्व करते हैं। मन ये लब्धिसार क्षमनासार हमने कितने कष्ट झेले तब भी ये तैयार हुआ, ऐसा बोलते हैं। और सब तो इतना दिन क्यों लगा, लाओ ना अभी, रोज बोलते हैं आज लाऊंगा, कहाँ है वो? अपने कार्य बिगड़ने से
लेट होता है,
और सुधरने में क्या करना चाहिए? सुधरने में यानी सही हो गया, टाइम पे मिल गया, वस्तु स्वरूप का विचार आए कि ये ऐसा ही इसी वक्त होना था, हुआ, तूने क्या किया, पुद्गल का परिणाम तू कर सकता है, ऐसा वो प्रिंटर को नहीं बोलते हैं। अपने लिए सही बात है। तो कहते हैं कि देखो सम्यक्त्व की भावना से ग्रस्त को गृह कार्य संबंधी आकुलता क्षोभ दुख मिट जाए, एक बात, कार्य के बिगड़ने सुधरने में वस्तु स्वरूप का विचार आवे तब दुख मिट जाए। ये कब पॉसिबल है कि हमें जब वस्तु का स्वरूप ख्याल में आ जाए? वस्तु का स्वरूप यानी अपने स्वद्रव्य का स्वरूप, स्वद्रव्य का स्वरूप यानी अपने को सम्यक्त्व हो जाए तो ऐसी बात सहज हो जाती है। सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार होता है कि
कार्य बिगड़ता है तो ये आकुलता होती है, और अब हमने जैसा सोचा वैसे हो जाए तो क्षोभ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा,
खुशी होगी।
उसको भी क्षोभ का है ना, चंचल का है ना परिणाम है, वहाँ भी अंदर से जो कुछ अभिमान हो रहा है, जो कुछ परिणाम, देखो मैंने ये किया, मैंने जैसा सोचा वैसे हो गया, ये सब क्या है? वो भी
आकुलता ही है।
हमें क्या लगता
है
कि बिगड़ जाने पर ही आकुलता होती है? ऐसा नहीं, हाँ, देखो मैंने कैसा किया, मैंने उसके बारे में सोच सोच उसी की बात सोचता रहता है, और उसका कर्तृत्व तो अपने को ले लेता है। अभी तत्व और अतत्व लेते हैं ना, हम तो उस रूप से है ही नहीं, अतत् रूप से, तो उसका कर्तृत्व तो हम क्यों ले? वो अपने से हुआ है, हुआ तो भी अपने से, नहीं हुआ वो तो भी अपने से। ये कहते हैं कि वस्तु स्वरूप का विचार आवे त्यारे दुख मटी जाए.
नहीं, ये तो हमें वारंवार अपने जो रोजमर्रा जिंदगी में जो जो बातें हम फेस करते हैं उस समय इन बातों की हमें याद होनी चाहिए. अरे इतने दिन से हम चक्कर काट रहे, काम ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, कुछ तो भी होता होगा ना. हाँ हो रहा है. क्या हो रहा है? खिसा खाली हो रहा है. तो कितना अंदर में आकुलता होती है, कितनी आकुलता होती है. तुम क्या करें भैया, जब होना है तो होगा. तुमको क्या होगा घर में बैठ के बोलने को ऐसा करके अपनी. अब यहाँ तो कुंद आचार्य है नहीं, कुमार स्वामी जी है नहीं, उनको क्या बोलेंगे हम. वो तो लिख रहे, बता रहे, भावार्थ दे रहे. किसका? कुंद आचार्य के मोक्ष पावड गाथा 86 का. ये कहते हैं कार्य बिगड़ने सुधरने में वस्तु स्वरूप का विचार आए तब दुख मिट जाए. सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार होता है कि सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु स्वरूप जाना है वैसा निरंतर परिणमित होता है और वैसा ही होता है. उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर सुखी दुखी होना व्यर्थ है. यानी इष्ट से तो सुखी होता होगा कि नहीं, तो साचा सुख थोड़ी है वो, सुखाभास है. ऐसे विचार से दुख मिटता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, इसलिए सम्यक्त्व का ध्यान करने को कहा है. अब सम्यक्त्व के ध्यान की महिमा कहते हैं. ये मोक्ष पावड की गाथा है, वो पहले 86 पढ़ी थी, अभी 87 हम पढ़ेंगे.
सम्मत्तं दोजायै सम्मायिट्टि अवेयि सो जीवो सम्मत्त परिणतो न अवेयि दुट्टट्टकम् मानी.
जो सम्यक्त्व को ध्याता है वह जीव सम्यक दृष्टि है और सम्यक्त्व रूप परिणमित जीव आठों दुष्ट कर्मों का क्षय करता है. देखो सम्यक्त्व का ध्यान ऐसा है कि यदि पहले सम्यक्त्व न हुआ हो तो भी उसके स्वरूप को जानकर उसका ध्यान करे तो वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है और सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर जीव के परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि संसार के कारणभूत आठों दुष्ट कर्मों का क्षय हो जाता है. अब यहाँ ये सम्यक्त्व का ध्यान ऐसा है जो कहा ना, तो वास्तव में सम्यक्त्व ये तो पर्याय है भाई, पर सम्यक्त्व का जो विषयभूत ऐसा जो कोई त्रिकाणी द्रव्य है उसका ध्यान करना है. ख्याल में? क्योंकि हम पर्याय का ध्यान करेंगे तो पर्याय तो हम जैसे जो श्रुत ज्ञानी हैं उनके तो पर्याय का ध्यान ही नहीं हो सकता. एक समय की जो पर्याय वो ज्ञान में ही नहीं आती. जब तक हम आपको ये बता रहे हैं तो इसको एक अंतर्मुहूर्त आप जब तक नहीं देखोगे तो ये क्या है ये ज्ञान में भी नहीं भासित होगा. तो यहां कह रहे हैं कि सम्यक्त्व का ध्यान ऐसा है, यानी अपने आत्मा का ध्यान ऐसा है कि यदि पहले सम्यक्त्व न हुआ तो भी उसके स्वरूप को जानकर उसका ध्यान करे तो वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है. यानी अपने त्रिकाली स्वरूप स्वभाव का उसको जानकर उसका ध्यान करे तो ही सम्यक दर्शन होगा. और सम्यक तो प्राप्ति होने पर जीव के परिणाम ऐसे हो जाते हैं, यानी उत्तरोत्तर वह जीव अपने स्वरूप में ही अधिक 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 एकाग्र होते जाता है और वो आठ कर्मों का, वो कैसे आठ कर्म, दुष्ट आठ कर्म है. तो कर्म भी फेवरेबल और नॉन फेवरेबल होंगे कि नहीं, तो फिर उनको दुष्ट क्यों कहा? ये लौकिक अपेक्षा. जो अपने फेवर में नहीं रहते वो दुष्ट ही रहते हमेशा. क्यों? हमारे बाजू वाले हमारे फेवर में नहीं तो हम बोलेंगे अरे वो ऐसे वो वैसे हैं. ये तो दुष्ट अष्टकर्म ये तो कहने की पद्धति है। तो ये दुष्ट कर्मों का क्षय हो जाने से क्या होता है भाई अमोल जी? डोंट लेट हिम थिंक, वो बिल्कुल सही बताएगा। आठ कर्मों को उन्होंने नाश किया, बोलो अभी अभी क्या होगा? कौन सा पद प्राप्त करेगा? सिद्धावस्था प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा, सही बात है।
चार कर्मों का बात होने पर केवल आठ कर्मों की बात पूछो, सिद्धावस्था
दुठ्ठ कर्म लिखा ना, दुष्ट आठ कर्म। देखो ऊपर लिखा, देखो अर्थ में सेकंड लाइन में आठों दुष्ट कर्मों का क्षय करता है, यानी ये क्या है, ये सम्यक्त्व की महिमा बता रहे ना। तो जिसके सम्यक्त्व होगा वह तो बारंबार अपने स्वरूप में एकाग्र होते जाएगा, तो एक समय ऐसा होगा कि आठों ही कर्मों का नाश होते हुए वह सिद्ध अवस्था प्राप्त करेगा। इसलिए कह रहे हैं सम्यक्त्व होते ही कर्मों की गुणश्रेणी निर्जरा होती जाती है, और अनुक्रम से मुनि होने पर, चारित्र और शुक्ल ध्यान के सहकारी होने पर सर्व कर्मों का नाश होता है। ये तो सम्यक्त्व होते ही, अब यहाँ तो अभी हमने थोड़ा सा अधिक पढ़ा है, तो पांचवें गुणस्थान से आगे कर्मों की निर्जरा चालू होती है और वो श्रेणी में गुण श्रेणी निर्जरा होने को चालू होती है। अब कह रहे हैं और अनुक्रम से उन्होंने मुनि वगैरह वगैरह प्राप्त करके शुक्ल ध्यान के सहकारी, ये शुक्ल ध्यान कितने प्रकार का है दिव्य में आप जानती हैं? चार प्रकार के नाम मालूम है प्रेरणा में? आप सोचो जब तक अरविंद भाई बता दें। अरे क्या बात कर रहे हैं, पृथक्त्व वितर्क विचार, वी दीर्घ लेना, वी विचार यानी विचार करना और विचार यानी पलट। पहला पृथक्त्व वितर्क विचार एकत्व, हाँ बोलो, हाँ बोल रहे। अरे वो बोलते तो तुम बोलते हो, तुम बोले तो वो बोलते, ऐसा क्यों? आप बोल रहे, बोलो भाई। विचार अविचार, ठहरो, पृथक्त्व वितर्क विचार एकत्व वितर्क अविचार, हाँ तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवृत्त, विपरीत विपरीत व्यू 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 विपरीत क्रिया निवृत्त, ये चारों ही जो कई शुक्ल ध्यान है वो आठवें गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक चलते हैं। तो ये अभी ऐसा है ना कि इनके थोड़ा आगे पीछे बातें हो रही है, अनुक्रम से मुनि
क्षण सम्यक्त के काल में गुण श्रेणी होती है और बाद में पांचवे छठे सातवें निरंतर रहती है, उसकी अपेक्षा बताएं।
चारित्र और शुक्ल ध्यान के सहकारी होने पर सर्व कर्मों का नाश होता है, इस बात को संक्षेप में कहते हैं। चलो
किं बहुना बणीयेनम् ये सिद्धा नरवरा गए काले सिज्जहद्ये विभविया कंदानै सम्मा अपम।
श्री कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं बहुत कहने से क्या साध्य है, किम बहुना बणीयेनम्, सिद्ध क्या होने वाला है? कहते हैं जो नर प्रधान यानी नरों में श्रेष्ठ भूतकाल में सिद्ध हुए और भविष्य में सिद्ध होंगे वह सब, वे सब चाहिए, ये हिंदी वालों की हमेशा भूल होती है, वह सब सम्यक्त्व का ही महात्म्य जानो। यस 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 यस, वह सब सम्यक्त्व का ही महात्म्य जानो। अभी ये भावार्थ कल हम देखेंगे।
जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालो सोवाणी मस्त नमो सदा देत हूँ।